आज है 13 अगस्त 2023 की सैटर क्लास। ओम शांति। बच्चों को बाप आए हैं श्रीमत देने के लिए और समझाने के लिए। दो बातें, श्रीमत देने के लिए और जो श्रीमत दी है उसे समझाने के लिए। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि 10 वर्ष के अंदर ड्रामा अनुसार सारा कार्य होना है। कौन सी संत की वाणी है? 66 की। क्या सारा कार्य हो गया 10 वर्ष के अंदर? 66 से लेकर 10 वर्ष माना 76। 1976 के अंदर क्या सारा कार्य हो गया?
नंबर वन आपका
सारा कार्य होना है, बाकी 10 वर्ष रहे हैं। इस रावणपुरी को फिर विष्णुपुरी बनाने में 77 में विष्णुपुरी बन गई क्या? प्रैक्टिकल में तो नहीं बन गई, लेकिन दृढ़ता के आधार पर मन के संकल्पों में कोई आत्माएं तैयार हुई जिनके मानस पटल पर विष्णुपुरी का पक्का खाका खिंच गया, जिसके लिए पहले भी बोलते चले आए कृष्ण की तीली पर बहस दिखाते हैं। कृष्ण की लात में नरक दिखाते हैं, नरक को लात मारता है और नई दुनिया को तीरी में लेता है। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को तीरी पर बहस लेकर के आया। तीरी माना हथेली, ये है बुद्धि रूपी हथेली। जरूर कोई आत्माएं थी 76 में जिनकी तीरी पर माना बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का पूरा खाका खिंच चुका था। अभी बाप गुप्त भी है, पढ़ाई भी गुप्त है। अभी माना कब? 66 में। 66 में बाप गुप्त है और 10 वर्ष में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो 76 में जरूर कोई आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुआ। अभी बाप गुप्त भी है, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत है। छोटे बड़े गांव में छोटे छोटे सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अभी बच्चों ने चैलेंज दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें तारीख लिखनी है, आज से यानी 1966 से 10 वर्ष के अंदर हम अपने इस भारत को स्वर्ग बना करके छोड़ेंगे। '76 में भारत को स्वर्ग बनाने के लिए घोषणा कर दी, तो भारत कोई जड़ के लिए बोला गया, जड़ जमीन के लिए बोला, या उस समय की जो 50-60 करोड़ आत्माएं थी उनके लिए बोला, या उन सारी भारतवासी आत्माओं के प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा के लिए बोला? آتما کے لیے بولا یا اس کے شریر کے لیے بولا؟ آتما کے لیے بولا. آتما سنچتر میں جان کی پراکاشتا سے بھری پوری ہو جاتی ہے. تم کو یہ باتیں بہت پریے ہیں کیونکہ تم جانتے ہو یہ بھارت ہی سورگ تھا. ان کو 5000 ورش ہوئے. بھارت بہت شاندار تھا. ان کو سورگ کہا جاتا تھا. تم برہما مکھ ونشاولی کو ہی یہ نالج ہے کیا؟ بھارت کے بارے میں 5000 ورش پہلے کیا تھا اور 10 ورش کے بعد کیا ہوگا یہ تم برہما مکھ ونشاولی کی بدھی میں ہے. جو برہما کے کک ونشاولی ہے ان کی بدھی میں یہ بات نہیں ہے. اس بھارت کو شریمت پر سورگ ضرور بنانا ہے. سب کو راستہ بتانا ہے اور کوئی بھی کھٹ پٹ کی بات نہیں ہے. آپس میں بیٹھ رائے کرنی چاہیے. ان پردرشنی کے چتروں دوارا ہم ایسا کیا ایڈورٹائزمنٹ کریں جو اخبار میں بھی چتر دے. میں آپس میں اس بات پر سیمینار کرنی چاہیے. جیسے کانگریس لوگ آپس میں ملتے ہیں رائے کرتے ہیں کہ بھارت کو ہم کیسے سدھاریں. یہ جو اتنے کرسچن آدی ہو گئے ہیں ان کو آپس میں مل کر کے ٹھیک کریں. کتنے کرسچنس بن گئے ہیں, بھارت واسی کنورٹ ہو گئے. بھارت میں سکھ شانتی کیسے استھاپن کریں. تو دیکھو گورنمنٹ کا بھی یہ پرسار چلتا رہتا ہے. تم بھی پانڈو گورنمنٹ گائی ہوئی ہو. یہ بڑی ایشوریہ گورنمنٹ ہے. پتت پاون باپ ہی پتت بچوں کو بیٹھے پاون دنیا کا مالک بناتے ہیں. یہ بھی بچے جانتے ہیں. یہ ہے رودر گیانی کی. اس کو گیان یگی کہا جاتا ہے. رودر کہا جاتا ہے ایشور کو. رودراوتار ایشور کون ہوا؟ دکشن بھارت میں آرت دیووں کے چتر دکھائے جاتے ہیں. ان میں ایشور کا چت شنکر کا چتر دکھایا ہے. وہ وناشکاری بتایا جاتا ہے. ساری دنیا کا وناش کرائے دیتا ہے. تو رود روپ دھارن کرنے والا ہوا نا. گایا ہوا ہے برابر گیان یگی رچا تھا. کس نے گیان یگی کس نے رچا؟ رودر نے رچا. اس لیے بولا آپ ویکت وانی میں یگی کے آج سے ہی یگی کنڈ سے وناش جوالا بھی پرجولت ہوئی. جو بنا جوالا پرجولت ہوئی ہے آج میں انت میں اسی بنا جوالا کو تم بچوں کو سمپن کرنا ہے. तो बरोबर ज्ञान यज्ञ क्या था, वो लोग नहीं जानते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या था। कौन लोग? तुम जानते हो कि आज में रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा लगाई दिए, अज्ञान की घोर अंधेरे की नींद में साफ सोए पड़े। अभी तुमको बाप ने जगाया है तो तुमको औरों को भी जगाना है, जो सोए पड़े हैं उनको जगाना है। ड्रामा प्लेन अनुसार तुम जानते रहते हो इस समय तक एक एक ने कैसा कैसा पुरुषार्थ किया। जैसा पुरुषार्थ किया था कल पहले वैसा ही अभी भी करते रहते हैं। हाँ, युद्ध का मैदान है, सर्विस है, बड़ी अच्छी तेजी से चलती है। तब कहीं कहीं बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं तो माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम के संतानों को बेहोश कर देती है। किसके संतानों को? राम के संतानों को। कृष्ण के संतानों को क्यों नहीं कहा है? कृष्ण के संतानों को नहीं कहा, राम के संतानों को बेहोश कर देती है। क्यों? कृष्ण तो खुद ही संतान बनता है। यज्ञ के आदि में भी पहला संतान था, नई दुनिया का आरंभ होगा तो भी संतान होगा। राम बाप को कहा जाता, तो राम के संतान को माया बेहोश कर देती है। राम के बच्चे कोई दो नहीं है, ऐसे शास्त्रों में दिखाई दिया राम के दो बच्चे थे, लव और कुश। यहाँ तो देखो ढेर बच्चे हैं। क्या जो ढेर बच्चे हैं उनमें कुछ लव फुल है, कुछ कुश, कुछ माना काटा, कुछ दुखदाई है। तो दो तरह के बच्चों को दो नाम दे दिए, लव और कुश। तो देखो ढेर बच्चे हैं, इन बातों को कोई जानते नहीं है। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कह सकते हो? कैसे? कि सारी दुनिया घोर अज्ञानी की निद्रा में सोई पड़ी है। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वो ही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो हम केवल ईश्वरीय संप्रदाय है जो जागे हैं, बाकी सब सुन पड़े। वो ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है। वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि आया था, पहले कभी आया था, आकर के ज्ञान सुना के चला गया। तुम कहते हो नहीं, और धर्म पिताओं की तरह ईश्वर बाप आया राम गया राम बन करके नहीं जाता है, वो तो आता है तो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना करके जाता है, नरक को स्वर्ग बना करके जाता है। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके चला गया, ज्ञान सुनाना, भाषण देना, बातें बनाना, ये दुनिया भी मनुष्य गुरुओं का काम है। वो बातें बनाकर नहीं जाता है, काम करके जाता है। तो वो आ गया है, कब आ गया है? संक्षिप्त में ही आ गया, लेकिन गुप्त था, छाछ में भी गुप्त था। प्रत्यक्ष होने की बात सबकी बताई है, तो हमेशा गुप्त नहीं रहेगा। बच्चों को वर्षा देने के लिए आया, बिना वर्षा दिए वापस नहीं जा सकता। कौन सा वर्षा? दुखों से मुक्ति, मुक्ति का वर्षा, और सारे जीवनों के लिए सुखों की प्राप्ति, जीवन में रहते हुए भी सुखों की प्राप्ति। आज की दुनिया में तो जीवन तो है, लेकिन ऐसे जिए हैं जैसे मरे हुए मुर्दे, जैसे टिकटी पर बंधे हुए पड़े हो, सबको बंधन लगा पड़ा, कोई भी मुक्त नहीं है। तो बाप आते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, जिस मकसद से आते हैं वो मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं जा सकते। तो ये बातें बिल्कुल भूल गए। देखो, बाप भारत में ही आते हैं और आकर के भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, अभी इस बात में कोई शक नहीं है। परम पिता का भी जन्म होता है। देखो, शिव जयंती भी मनाते हैं, इसका जन्म होता है परम पिता का, जिसका पिता कोई नहीं होता है। जरूर उसने आकर के कुछ तो किया होगा ना, कि बिना कुछ किए वापस चला गया। बुद्धि कहती है परम पिता आते हैं तो आकर के जरूर स्वर्ग की स्थापना की होगी। ऐसे ही वापस नहीं जा सकता। पहले मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में स्वर्ग की स्थापना करता है, फिर वो स्थापना की बातें एडवांस नॉलेज के रूप में वाचा से बाहर आती है। तो पहले होता है मनसा का काम, फिर वाचा का काम, फिर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पार्टी भी एडवांस में तीन पार्टियां हैं, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है, बच्चों में प्रवेश करती है, और दूसरी वो पार्टी जो प्लानिंग बनाने वाली है, जिनकी मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में नई दुनिया की स्थापना का पूरा खाका खिंच जाता है। प्लानिंग पार्टी اور تیسری پارٹی ہے پریکٹیکل پارٹی. تو پریکٹیکل پارٹی کا بھی کاریہ ہونا ہے, ایسے نہیں کہ تیری پر ہی بحث لے کر کے آیا ہوا ہے تو دکھاتا رہے گا لوگ دیکھتے رہو. پریکٹیکل سورگیہ سنگٹھن بنا کر کے واپس جائے گا, پریرنا سے تھوڑے ہی استھاپنا کریں گے. اگر پریرنا سے ہی استھاپنا کرنی ہوتی تو اس دنیا میں آنے کی کیا درکار, پھر تو اوپر بیٹھے بیٹھے ہی پریرنا دیتا رہے, پرانی دنیا کا وناش بھی ہو جائے نئی دنیا کی استھاپنا بھی ہو جائے. یہاں تو تم بچوں کو راج یوگ سکھایا جاتا ہے. کیا ان بچوں کو, تم بچوں کو جو بچے سنمکھ آ کر کے بیٹھتے ہیں ان بچوں کو راج یوگ سکھایا جاتا ہے, اس میں راج بھرا ہوا ہے. یاد کی یاترا سکھائی جاتی. کیا جو بھی بچے آ کر کے بیٹھتے ہیں باپ کے سامنے ان کو یاد کی یاترا سکھائی جاتی ہے. کیسے؟ کہ آنکھ کھلی رکھو. کیا آنکھ, جو آنکھ اندری ہے شریشت سے شریشت جان اندری ہے وہ کھلی رکھو, آنکھ بند نہیں کرنی. مانا اندریوں سے کام بھی کرتے رہو, کام بھی کرتے رہو لیکن بدھیوگ سے بند ہو جاتا. تو یہ راج یوگ یہاں سکھایا جاتا ہے اور کہیں نہیں سکھایا جاتا. یہاں مانے کہاں, یہاں مانا کہاں, جہاں باپ بیٹھ کر کے بچوں کو راجیوگ سکھاتے ہیں وہاں راجیوگ سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی راجیوگ نہیں سکھا سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم بھی راجیوگ سکھاتے ہیں تو بیوقوف بنا رہا ہے, وہ نرک کی دنیا میں کنورٹ کر کے لے جائے گا. کیا ابھی 21 جنم کی بات نہیں ہے, 21 جنم میں 1, 2, 4 جنم کا گھاٹا آ سکتا ہے. ابھی نرک میں ان 21 جنموں میں کنورٹ ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن یہاں شوٹنگ ہو جائے گی. کیا شوٹنگ ہو جائے گی؟ کہ جب 63 جنموں کی دنیا شروع ہوگی دواپر کلیوگ کی, دوائت بات کی, دوائت بات ہوا نا, باپ کہتے ہیں میرے سوائے کوئی بھی راجیوگ منشی ماتر نہیں سکھائے سکتا, اور وہ گرو لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تم کو راجیوگ سکھائیں گے ہمارے پاس آؤ. اب وہ راجیوگ سکھائیں گے کہ راج بھوگ کھلائیں گے. وہ تو دنیا میں بھوگ واسنا کی جو باتیں ہیں وہی سکھائیں گے, جیسے اور دھرم پتاؤں نے سکھایا تو نرک کی دنیا میں ڈھکیل دیا. تو یہاں شوٹنگ ہو رہی ہے, بہت الرٹ ہو کر کے رہنا ہے, ایسے نہ ہو کوئی دیہداری گرو کے چمبے میں پھنس جائے اور دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو جائے, بعد میں پتا چلے ارے ہم تو سورگ کے دیوی دیوتا بننے کے لیے آئے تھے, یہ تو ہم دوسرے دھرم میں کنورٹ ہونے کی شوٹنگ کر دی. تو یہاں بچوں کو راجیوگ سکھایا جاتا ہے. اور دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے جو راجیوگ سکھا سکے. پریرنا سے یہاں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. سمجھتے ہیں شنکر کی پریرنا ہوتی ہے, तो शंकर की प्रेरणा से वो यादव मूसल बनाते हैं। मिसाइल्स, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। अभी तुम समझ गए हो, उन यादवों का तो पार्ट है क्या मिसाइल आदि बनाना। ड्रामा में ये मूसल बनाना नूद है, ये शास्त्रों के अक्षर है क्या यादवों के पेट से, यादवों के बुद्धरूपी पेट से मूसल निकले, अभी भी निकल रहे हैं। जो बेहद के यादव हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी ग्लानी के बांब तैयार कर रहे हैं। मूसल तैयार कर रहे हैं और जो बाहरी दुनिया के हैं, हद की दुनिया के, वो हद के बांब तैयार कर रहे हैं। शंकर को ऐसे रखा है, शंकर प्रेरणा से काम कराता है, ऐसे कहने वालों ने शंकर को चित्रों में ऐसे रखा है जैसे रावण को रखा है। काली काली दाढ़ी, भयंकर चेहरा, जैसे टीवी में वो दिखाते हैं ना चित्र जो बच्चे देखते हैं कार्टून, तो दुनिया का सबसे बढ़िया कार्टून बना के रख दिया है। ऐसा कोई आदमी होता है जो पांच पांच सांप एक सर के ऊपर है, दो भुजाओं में, एक गले में, एक कमर में चिपका के रखे, मृगशाला दिखाई दी है, डमरू दिखाई दिए है, और देवताओं के बढ़िया बढ़िया वाद्य यंत्र, उसकी कोई सुरताल ही नहीं, दोनों तरफ आवाज करता है। दोनों तरफ आवाज क्यों करता है, है? क्योंकि दोनों तरह के बच्चों की पालना करनी है। जब कुछ से दो बच्चे दिखाए ना, अब प्रैक्टिकल में जो भी बच्चे हैं लव कुश, उनको पालना देने के लिए राइट साइड में भी बाजा बजाना पड़े और लेफ्ट साइड में भी बाजा बजाना पड़े। ऐसे तो बंदरों के आगे डमरू बजाया जाता है। तो डमरू अभी बज रहा है, संचेतन में पहला पहला लिटरेचर निकाला गया था एडवांस पार्टिकल, उस पहले लिटरेचर का हेडिंग भी दिया गया, सेवका डमरू डम डम बोले आगम निगम के वेद खोले। तो बताया कि शंकर को ऐसे रख दिया है जैसे रावण को रखा है। अब शंकर तो सूक्ष्म बदन में है, जिन्होंने रख दिया है वो ही कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकर कहाँ है, शंकर सूक्ष्म बदन में है। वहां से प्रेरणा तो कोई चल नहीं सकती। रामानुसार ये विनाश तो होना जरूर है, तो जो पास्ट हो गए हैं, 5000 वर्ष की दुनिया में जो पास्ट हो गया है वो फिर जरूर होगा, और यही के आदि में भी जो पास्ट हो गया है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, वो अब फिर संपन्न होगी, तो रिपीटेशन होगा जरूर। तुम गारंटी करते हो कि हम 10 वर्ष के अंदर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, तेरे आठ चार शक्ति वाणी का दूसरा पेज, ऐसे स्वर्ग की स्थापना करेंगे जहां एक धर्म होगा। क्या एक ही प्रकार की धारणा होगी, दो प्रकार की धारणाएं नहीं होगी? एक व्यक्ति की धारणा हो कि एक शिव बाबा ही राजयोग सिखा सकता है, और दूसरे की धारणा हो नहीं, इतनी बड़ी दुनिया को एक शिव बाबा ही कैसे राजयोग सिखाएगा, और भी तो होने चाहिए। तो दो प्रकार की धारणाएं हो गई ना, अगर दो प्रकार की धारणाएं हैं तो धर्मगुरु भी कितने हुए? दो प्रकार के धर्मगुरु हो गए, यहां तो एक ही सदगुरु है, कैसे भी है सच्चा सदगुरु शिव भगवान, सत्य एक कहा जाता है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, एक के अलावा सारी दुनिया झूठी है, सब स्वार्थी है, अपनी भड़ास पूरी करते हैं, किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो बाप कहते हैं अभी एक धर्म होने वाला है, तुम ऐसे नहीं लिखते हो कि अनेक धर्म विनाश होंगे, वो तो चित्र में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग की स्थापना होती है, जब स्वर्ग की स्थापना हो जाती है तो दूसरे धर्म होते ही नहीं, तो जरूर सब विनाश हो जाएंगे। क्या कहीं की स्थापना होती है? स्वर्ग की, स्वामन आत्मन और गामन गया। जब बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अनुभव करेंगे, इसी दुनिया में अनुभव करेंगे, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा अनुभव करेंगे, और जब स्वर्ग का अनुभव करेंगे देवता धर्म की स्थापना का अनुभव करेंगे तो उनकी मन बुद्धि में ये बात पक्की हो चुकी होगी कि आप हुए मर गई दुनिया, और धारणाओं से बुद्धियों का हट जाएगा, कोई में आस्था नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही बातों में आस्था रहेगी, बाकी शंकर आदि की कोई इसमें बात नहीं है कि सब धर्मों का विनाश कराए देते हैं, परंतु चित्र है, चित्र है, तो चित्र किस बात की यादगार होती है? जरूर ऐसा कोई चरित्र बजाया होगा जो सब धर्मों का विनाश हो गया होगा, करते नहीं है लेकिन चरित्र ऐसा बजाते हैं कि सात धर्मों का विनाश हो जाता है। मानवीय जो भी धर्म है, जो भी धारणाएं हैं, गड्ढे में ले जाने वाली, उनका विनाश हो जाता है। गाया हुआ है तो समझाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कैसी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और इतने से काम पूरा हो गया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना नहीं होती है सिर्फ, ये बात ठीक है। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, नंबर वाले ब्राह्मण तैयार होते हैं नौकुरी के, जो पवित्रता को धारण करते हैं। और उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाया जाए, तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा द्वारा नहीं, वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई नारी चोली में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में संसार में विख्यात होता है। उनकी अनेक भुजाएं हैं, उनको कहा जाता है अशोत्संगायन। जो भी आसुरी धर्म है, जो भी आसुरी धारणाएं हैं, उनका संहार कराई देती है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, और शंकर को फिर शिव के साथ मिलाई दिए। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाया, विष्णु को शिव के साथ नहीं मिलाया, शंकर को मिलाई दिए। कोई कारण होगा, और 33 करोड़ देवताओं को शिव के साथ क्यों नहीं मिलाया, शंकर को ही क्यों मिलाया? शिव के साथ शंकर का नाम क्यों मिलाई दिया? शिव का नाम पहले रख दिया, शंकर का नाम बाद में रखा। अरे त्रिदेव है तो तीनों ही देवताएं शिव की संतान तो है ना, लेकिन बड़े बच्चे का नाम गाया जाता है। यहाँ बड़ा किस आधार पर होता है? ज्ञान में बड़ा तो बड़ा कहा जाता है। तो शिवनेत्र शंकर को दिखाया जाता है, शिवनेत्र जो शंकर को दिखाया जाता है वो याद की प्रैक्टिस की बात है। याद में इतनी ताकत आ जाती है कि शिव की याद से वो अनिष्ट का विनाश भी कराता है या निमित्त बन जाता है और विश्व का बादशाह भी बन जाता है। इसलिए गाय है योग वंश से विश्व की बात है। तो शिव के साथ मिला देते हैं, शिव शंकर कह देते हैं, मिलाए क्यों देते हैं? क्योंकि शंकर तो कोई काम करते नहीं है, शंकर कोई काम नहीं करते। अरे कोई काम भी नहीं करते और फिर मिला ही देते हैं शिव के साथ, ये क्या बात हुई है? हाँ, याद में रहना कोई काम नहीं होता है, काम तो कर्म इंद्रियों से किया जाता है और कर्म इंद्रियों से तो याद होती नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म किया जा सकता है, याद तो सिर्फ बुद्धि का विषय है। तो शंकर कोई काम नहीं करते, अकर्ता कहे जाते और शिव भी कोई काम नहीं करते। वो काम करते क्या नहीं करते, ज्ञान ही सुनाते है, ज्ञान भी सुनाते। तो ऐसे क्यों कहा कि शंकर कोई काम नहीं करते, माने ज्ञान सुनाने का काम शिव की सोल का है, शंकर की सोल का ज्ञान सुनाने का काम नहीं है। तो शिव से शंकर को मिलाई दिया, परंतु शिव बाबा कहते हैं भले शंकर कोई काम नहीं करते लेकिन मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। क्या ऐसे नहीं कि शंकर कोई काम नहीं करते तो मैं भी कोई काम नहीं करता हूं? शिव के साथ शंकर की सोल मिक्स जरूर कर दी है नाम के रूप में, लेकिन काम एक का है। इसलिए बोला है देव देव महादेव कहते हैं, वो भी मैं हूं। कौन? शिव ये पाठ बजा के दिखाता है उस के द्वारा, देव देव महादेव। नहीं तो वो आत्मा और भी जन्मों में तो थी, उसको तो अमर कहा जाता है, देवताओं के बीच में अमर अमर पाठ बजाने वाला। एक ही रूप है, साकार रूप है, यादगार में जिसकी साकार मूर्ति बनाई जाती है, जिसके लिए गायन है, वो कभी मरता नहीं, किसी ने उसको जन्म नहीं दिया, वो कभी जन्म नहीं लेता। 33 करोड़ देवताओं का जन्म दिखाया जाता है, मृत्यु दिखाई जाती है, लेकिन शंकर का जन्म और मृत्यु नहीं दिखाते। बाकी सारा काम शिव का है, शंकर की तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं है। क्या मेरे साथ कोई बात नहीं? मेरे माने किसके? शिव वाली आत्मा के साथ शंकर की कोई बात नहीं। वो तो सूक्ष्म बतनवासी आकारी है, सूक्ष्म मन चिंतन में मस्त रहने वाला है। जैसे लोग भांग घोलते हैं ना, तो भांग पीने वाले अपने ही नशे में मस्त रहते हैं, आंखें झड़ जाती हैं, तो वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, सूक्ष्म बतलवाती है। मैं तो इस साकार में आकर इन द्वारा इस साकार में आकर, माने कोई एक साकार है और इन द्वारा, इन माना राम और कृष्ण दो सोल, राम की सोल के द्वारा और कृष्ण की सोल, इस साकार में आकर इन द्वारा स्थापना का कार्य करता हूं। शंकर का तो इतना पार्ट है नहीं है? इतना पार्ट नहीं है तो कुछ न कुछ है तो जरूर, इतना नहीं है जितना शिव का है, जितना ब्रह्मा का है, लेकिन कुछ है। तो शंकर की पूजा करके मनुष्य क्या करेगी? पूछा जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों में शिवलिंग की पूजा ज्यादा होती है या शंकर की मूर्ति की ज्यादा पूजा हो रही है? शिवलिंग की पूजा गांव गांव में हो रही, विदेशों में भी खुदाइयों में शिवलिंग मिले हैं, शिव की पूजा होती है, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं, ब्रह्मा भी तो प्रजापिता कह रहे ना, बाकी शंकर के लिए कहते ये धतूरा खाते थे। जहां जहां शिव के मंदिर होते हैं वहां आस पास धतूरे के पौधे भी होते हैं। वो इतना नशीला होता है कि 10-5 पत्ते रात में खा करके सो जाओ तो सवेरे को कपड़े अपने सब उतार के पागलों की तरह घूमते हैं। और उसका जो फल होता है जो शिव पर चढ़ाया जाता है उसके बीज तो बहुत ही नशीले होते हैं। तो शंकर के लिए कहते हैं ये धतूरा खाते थे। जो धतूरे का फल होता है वो जब पक जाता है तो उसके अंदर बीज काले काले रंग के होते हैं और बहुत नशीले होते हैं। तो क्या खाता था? धतूरा खाता था। जैसे कि इनका कोई रियल पार्ट नहीं है, क्या ऐसा पार्ट है? इनका रियल पार्ट नहीं है, माना नारियल का पार्ट है। नारियल को कितने आंखें दिखाई जाती है? 3 आंखें दिखाई जाती। नारियल की जब जटाएं हटा दे तो क्या बचता है? खोपड़ा। नारियल का नाम भी क्या कहते हैं? खोपड़ा। शिव के मंदिर में या देवी के मंदिर में जब जाते हैं तो नारियल को ले जाते हैं, क्या करते हैं? दार से फोड़ते। तो शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं इनका कोई रियल पार्ट नहीं है। धतूरा खाया, भंग पीते थे, क्या एक एक जो फल होता है ना धतूरे का उसमें बाहर बहुत कांटे होते हैं, अंदर काले काले बीज होते हैं, तमो प्रधान, काला माना तमो प्रधान बीज। तो धतूरा खाता था, भंग पीता था। भंग जो है वो सिर्फ एक प्रकार के पौधे के पत्तों से ही नहीं बनाई जाती, उसमें बीसियों तरह की चीजें डालते, तो उसका नाम पड़ता है भंग। भंग से बना है भंगी, भंगड़ी। ये सब शास्त्रों की कथाएं बनाई है। अरे अब शास्त्रों की कथाएं बनाई है तो उनका बखान क्यों कर रही मुरली में? शास्त्रों की कथाएं जो झूठी है, जिनमें कोई सार ही नहीं है, उन बातों का जिक्र भगवान के मुख से क्यों होता है? भगवान तो कहते हैं मैं शास्त्रों का सार सुनाता हूं, माना और विस्तार की बातें नहीं बताता हूं शास्त्रों की, मैं सार की बातें बताता हूं। तो कहते हैं ये सब शास्त्रों की कथाएं हैं, तो जो भी कथा कहानियां हैं, यादगार त्योहार आदि हैं, वो किस समय की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है। अब तुमको समझ में आता है क्या? तुमको ये बात समझ में आती है कि शंकर का इतना पार्ट नहीं है, जितना शिव का है या जितना ब्रह्मा का है या विष्णु का है? सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा, ये तो बड़ी पूज्य बात है क्या, कि जो ब्रह्मा है, बड़ी मां है, जगदम्बा है, वो क्या बनती है? विष्णु कर्म को बन जाती है, और जो विष्णु है वो ब्रह्मा का रूप बन जाते हैं। माने दोनों अर्थ परत है। जब प्रत्यक्षता होती है तो जगदम्बा माने ब्रह्म, और वैसे भी शक्ति, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ये बातें झट आ जाती है। कितना टाइम लगता है ब्रह्मा से विष्णु बनने में? एक सेकंड लगता है। तो ब्राह्मण बच्चों को भी देवता बनने में कितना टाइम लगेगा? एक सेकंड। तो दैवी संप्रदाय तो बनना ही है, एक ही बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जो समझे। पर लक्ष्मी नारायण का विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि विष्णु फिर लक्ष्मी नारायण बनते। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, वो क्या समझते हैं इसका? विष्णु के दो रूप माने एक लक्ष्मी एक नारायण, लेकिन नहीं, विष्णु के दो रूप माना राम का जन्म दिखाते हैं शास्त्रों में, तो भी कहते हैं विष्णु ने अवतार लिया, और कृष्ण का जन्म दिखाते हैं तो भी क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार, विष्णु ने कृष्ण का रूप धारण किया। तो राम कृष्ण और उनकी संयोगिनी शक्तियां, ये चारों आत्माओं का जो संस्कार स्वभाव का मिश्रण है, एक ही कार होना है, वही विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो दो रूप लक्ष्मी नारायण है विष्णु के, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में जो पुराना चित्र बाबा ने बनवाया था साक्षात्कार से, उसमें हिंदी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण और राम सीता, चार आत्माओं का नाम दिया हुआ है। बाद में संख्याचक में ही गुजराती में और अंग्रेजी में जो चित्र छपाए गए उनमें से वो शब्द राम सीता का हटाई दिया गया, सिर्फ लक्ष्मी नारायण रह गए। क्योंकि उनकी बुद्धि में यही था कि एक ही पेड़ है जो विष्णु का रूप है, तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो नई दुनिया में राज करती थी। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, ये चार भुजाएं तो सहयोगी की निशानी है। किसकी सहयोगी है? शिव की सहयोगी। ہو جائے ہیں تو بھجاؤں کو تیلانے والا بھی ضرور کوئی ہوگا. چار بھجائیں دکھائی گئی ہیں تو چار بھجاؤں کو تیلانے والا کون؟ شیو. شیو بندو جس کو کہتے ہیں شیو شنکر. اور چار آتمائیں کون؟ بھجاؤں کے روپ میں ہے. برہما کے ساتھ سرسوتی نہیں اور پاروتی جگدمبا. یہ چار آتمائیں چار بھجاؤں کے روپ میں ہیں. ان چار بھجاؤں کو سنچالن کرتا پریکٹیکل میں شیو شنکر بولے گا. تو سوکشم بدن میں ہم آپ جیسے دکھاتے ہیں پروتی مارگ کی وشنو چترگنج. یہ سارے ونڈ کی اس کی جاگرافی کیسے چکر لگاتی ہے کوئی بھی نہیں جانتے. باپ کوئی نہیں جانتے. تو ونڈ کی اس کی جاگرافی کو کیسے جانیں گے؟ باپ کی رچنا کو کیسے جانیں گے؟ باپ ہی رچنا کی آدی مجت کا نالج بتاتے. رشی منی بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کیونکہ دو اڑائی ڈھائی ہزار سال پہلے جو رشی منی ہوئے وہ ساتھی کے چیت کے تھے. ان میں پھر بھی ساتھ چکتا تھی تو وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے. آج کے ودوان آچاریہ سروے بھی کہنے لگے سیبو ہم کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پراچین رشی منی کہتے تھے نیتے نیتے ہم اس کے آدھ مجت کو نہیں جانتے کیونکہ باپ کو جان گئے تو رچنا کے آدھ مجت کو بھی جان گئے. باپ کہتے ہیں میں ایک ہی بار آ کر تم بچوں کو یہ سارا نالج سمجھاتا ہوں. کون کہتے ہیں سارا نالج ایک ہی بار آ کر سمجھاتا ہوں؟ کون کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں. اما نہیں کہتی. میں اما کے روپ میں نہیں کہتے ہیں کہ میں ساری نالج ایک ہی بار ایک ہی روپ میں سمجھاتا ہوں. میں ایک ہی ہوں جو باپ کے روپ میں بھی ہوں ٹیچر کے روپ میں بھی سمجھاتا ہوں اور سدگرو کا بھی پاٹ بجاتا ہوں. وہ ایک ہی روپ ہے دوسرا کوئی پریکٹیکل روپ نہیں ہے. اس کا مطلب برہما کا جو چولا تھا وہ باپ ٹیچر سدگرو کا روپ نہیں تھا. تمہیں ساری نالج ایک ہی بار آ کر کے سمجھاتا ہوں پھر آتا ہی نہیں. ایک بار سمجھا کے جاتا ہوں پھر آتا نہیں ہوں تو بعد میں کوئی کیسے سمجھا لے گا؟ رچنا کے آدھ مجنت کا نہ دیوتائیں جانتے ہیں نہ چھتری جانتے ہیں نہ دواپر یوگ میں جو رشی منی ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اور آج کے کلی کی دنیا کے تامسی منشی تو کیسے جانے؟ وہ تو اور ہی شاستروں کے الٹے پلٹے انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں. باپ کہتے ہیں میں سوئم آتا ہوں اور سوائے سنگم یوگ کے کبھی آتا بھی نہیں. بل گیتا میں لکھ دیتے سمبھوا میں یوگی یوگے کہ میں ہر یوگ میں آتا ہوں. وہ جھوٹی بات. میں تو صرف پرشوتم سنگم یوگ پر آتا ہوں اور اس پرشوتم سنگم یوگ کی یادگار شوٹنگ پیریڈ کی یادگار شاستروں میں لکھ دی کہ میں ہر یوگ کی شوٹنگ میں انت میں آتا ہوں. اوم شانتی.